हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक पूरा दिन काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसका कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं था। ऊपर से उसे इस बात का डर था कि अगर वो देव के साथ चली गई तो पक्का वो सिद्धार्थ खुराना उसका यूट्रस यानी गर्भाशय निकलवा देगा। लेकिन जब झलक देव के साथ नहीं गई, देव ने जल्दी ही दो आदमियों को इशारा किया और उन्होंने सीधा झलक के माथे से बंदूक सटा दी थी। अब झलक के पास कोई रास्ता नहीं था और जल्दी ही देव ने झलक को एक बड़ी ही शानदार गाड़ी में पीछे वाली सीट पर धकेल दिया था। झलक उस पर चिल्ला रही थी कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जाने दो मुझे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उस गाड़ी में बैक साइड पर कोई और भी बैठा हुआ था। अब तो झलक के थोक निगलते हुए उस ओर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि बाजी सिद्धार्थ खुराना था, जो बड़ी ही इंटेंशंस नज़रों से झलक की ओर देख रहा था। अब तो झलक अपनी लाड़ निगलने लगी थी और अपनी घबराहट को कंसोल करके हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर खुराना, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तब सिद्धार्थ ने उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम किस तरह से मरना चाहती हो? और जैसे ही उसने बड़े ही कोल्ड वॉइस में बड़े ही आसान शब्दों में ये कहा, अब तो झलक को ये लगा सामने बैठा हुआ इंसान डिसाइड कर चुका है कि उसे कब और किस तरह से झलक को मारना है। उस वक्त सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो मृत्यु का देवता था, जो जब चाहे जैसे चाहे जिसकी जान ले सकता था। तब झलक ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए शरारती अंदाज के साथ कहा, मैं मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं मरना चाहूंगी, लेकिन तब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। हालांकि मन में वो काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसने खुद को थोड़ा सा कंसोल किया हुआ था। अब जैसे ही झलक ने इस तरह की बात बोली, वही देव को अचानक झलक के बातें सुनकर जोरों से खांसी आ गई थी और वो चौंकते हुए ही मन में सोचने लगा, ये लड़की आखिरकार है क्या? किस तरह से बॉस को जवाब दे रही है? अपनी मौत को सामने देखकर भी इसे मजाक सूझ रहा है। वही झलक मन में सिद्धार्थ खुराना को कोसते हुए कितनी ही सारी गालियां दे चुकी थी। तभी अचानक सिद्धार्थ ने झलक के थोड़ा सा करीब जाकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था और थोड़ी तेज आवाज में बोला, गाड़ी चलाओ। अब तो झलक घबरा गई। कहीं न कहीं उसे ये लगने लगा कि कहीं वो उसे सचमुच मारने के लिए लेकर जा रहा है। अब तक देव ने थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोला, लेकिन बॉस, हमें किस ओर जाना है? प्लीज ऑर्डर कीजिए। तब सिद्धार्थ खुराना ने बिना किसी इमोशंस के कहा, अस्पताल की ओर चलो। अब तो जैसे ही झलक ने ये सुना, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था और वो समझ चुकी थी कि जरूर हॉस्पिटल में ले जाकर सिद्धार्थ खुराना उसका गर्भाशय निकाल देगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस शहर के दो पावरफुल परिवार झलक के जान के पीछे थे। पहला ओबेरॉय परिवार झलक के जान लेना चाहता था। उसका बोन मैरो लेने के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि ओबेरॉय परिवार झलक के जान लेने में एक मिनट नहीं लगाएगा। अभी फिलहाल उन्होंने झलक को जिंदा सिर्फ और सिर्फ उसके बोन मैरो के लिए रखा हुआ है। वहीं दूसरा सिद्धार्थ खुराना अब सीधा उसका यूट्रस निकलवा देगा। उसके बाद उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। अब झलक ने अब संघर्ष करना बंद कर दिया और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। उसकी आंखों में हल्के से नमी थी, लेकिन वो नमी उसने सिद्धार्थ खुराना को देखने नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद अचानक सिद्धार्थ खुराना का फोन बजने लगा था। अब जैसे ही झलक ने थोड़ी सी तिरछी नजरों से फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने देखा कि ये फोन तो सिद्धार्थ की दादी उर्वशी जी का है। सब झलक की आंखों में चमक आ गई थी और जैसे ही सिद्धार्थ ने फोन उठा, कान पर लगाया और अदब से बोला, जी दादी। तब अचानक झलक जल्दी से थोड़ी तेज आवाज में बोली, मुझे बचा लो दादी जी, मुझे बता लो, बचा लो, आपका बेटा सिद्धार्थ मेरा गर्भाशय काटना चाहता है। अब जैसे ही मौका देखकर झलक ने दादी के फोन आने पर उनसे मदद की गुहार लगाई। अब तो सिद्धार्थ का पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इससे पहले कि झलक अपनी पूरी बात कर पाती, सिद्धार्थ में तुरंत कसकर झलक की गर्दन को पकड़ लिया था और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने के लिए कहने लगा था। झलक की गर्दन को उसने बड़े ही तेज पकड़ा हुआ था और दांत भींचकर धीमे शब्दों में बोला, अगर तुम अभी नहीं मरना चाहती हो तो चुप रहो। अब सिद्धार्थ की आंखें देखकर झलक तो वैसे ही डर गई थी। उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और आंखों ही आंखों में बोली कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्योंकि सिद्धार्थ की दादी का फोन था तो इसीलिए उसने झलक को गुस्से से शांत होने के लिए कहा था और बंदूक निकालकर उसके कनपट्टी पर लगा दिया था कि अगर उसने जरा सी भी चूंचपाट करने की कोशिश की तो बंदूक की सारी गोलियां उसके भेजे में उड़ेल देगा। वेल, अब सिद्धार्थ ने फोन कान पर लगाकर कहा, जी दादी बताइए, किस लिए फोन किया है आपने? दादी जो गुस्से से भरी बैठी थी, क्योंकि जिस वक्त देव झलक को सिद्धार्थ के पास ला रहा था ठीक उसी वक्त उसने दादी को फोन कर दिया था। दादी के पास फोन की मिस कॉल चली गई थी, लेकिन उसके बाद देव ने वो फोन उनसे छीन लिया था। उसके बाद उन्होंने कितने ही बार झलक के नंबर पर फोन किए थे लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। वेल, अब सीधा झाड़ते हुए दादी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम और तुम झलक को कहाँ लेकर जा रहे हो? अब तो सिद्धार्थ चुप हो गया था। वो सोचने लगा, शायद इस लड़की की आवाज़ दादी के कानों तक चली गई है। तब सिद्धार्थ को चुप देखकर दादी झिड़की देते हुए बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है झलक? याद रखना सिद्धार्थ, अगर झलक को कुछ भी हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, समझे तुम, और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब जैसे ही दादी ने ये कहा, सिद्धार्थ की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। उसने बड़ी ही नफ़रत भरी नज़रों से झलक की ओर देखा, क्योंकि आज पहली बार उसकी दादी ने सिद्धार्थ से इस तरह से बात की थी। तब सिद्धार्थ अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करते सर्द आवाज़ में बोला, आखिरकार आपको हो क्या गया है दादी? आपको क्या लगता है, ये लड़की हमारे परिवार के लायक है? कहाँ से लगता है? कल की आई हुई लड़की आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो गई, हाँ, जो आप उसके लिए मरने की बात कर रही हैं। तब दादी ने खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए कहा, मुझे उसे लड़की की ज्यादा खास फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र सिर्फ और सिर्फ उसके पेट में पल रहे बच्ची की है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर पोते का मुंह देखना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पोते पोतियों की शादी होगी और तुम्हारी शादी भी होगी। अब सिद्धार्थ तो गुस्से से अपनी ठीक बराबर में बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई झलक की ओर घूरते हुए बोला, आपको क्या लगता है कि चली ये लड़की खुराना परिवार में शादी करने के लायक है? आखिरकार आपको उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके गर्भ में पल रहे बच्चे बच्चा ही चाहिए तो अभी तो इस बात का पता भी नहीं चल पाया है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तब दादी फिक्र जताते हुए बोली, इसके लिए तुम्हें 2 महीने रुकना होगा। याद रखना, अगर तुम इन 2 महीने में तुमने उसका बाल भी बांका करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपनी दादी की ऐसी बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लिए थे और फोन पर उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई थी। और साथ साथ वो मन ही मन में सोच रहा, इस घटिया लड़की ने उसके दादी का किस तरह से ब्रेन वॉश किया है। अभी सिद्धार्थ सोच रहा था तभी उसे दादी की एक बार फिर आवाज़ सुनाई देती और वो सख्त आवाज में बोली, सिद्धार्थ फोन स्पीकर पर डालो, मुझे अभी झलक से बात करनी है।
तब जैसे ही दादी ने बोला, सिद्धार्थ ने फोन स्पीकर पर कर दिया था। तब दादी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, झलक कैसी हो बेटा? तब झलक जल्दी से बोली, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब झलक ने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ की ओर देखा था, उसके चेहरे पर उसके लिए नफरत उसे साफ दिखाई दे रही थी।